शांति,
ओम शांति,
ओम शांति। तीन बार ओम शांति क्या याद दिलाती? दादी ने पाठ पक्का कराया ना हम सबको। मैं कौन हूँ, मेरा कौन है और मुझे क्या करना है। अपने आप को वास्तविक स्वरूप में जब रियलाइज करते हैं तो उसमें आनंद आता है ना? जब से हम सभी ने अपने मूल सत्य शुद्ध आत्म स्वरूप को महसूस किया तो हमें अपने ही स्वरूप में आनंद आता है ना? बाबा की याद में बैठते हैं तो और सभी बातों से न्यारे होकर अपने अनादि शुद्ध स्वरूप में हम स्थित हो जाते हैं तो हमें अपने ही स्वरूप में आनंद आता है। इसलिए भक्ति में भी जो साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, उनके नाम भी देखो, आत्मानंद, निजानंद, स्वरूपानंद, ये अपने स्वरूप का आनंद है। भक्ति में साधना की शुरुआत ही इस जिज्ञासा से हुई कि को हम, मैं कौन हूं। आज भी मुरली में बाबा ने कहा ना कि वो लोग फिर शिवो हम कहने लगे। को हम का उत्तर सबने अलग अलग दिया, सो हम, शिवो हम, ब्रह्मो हम, अलग अलग जवाब सब दे दिए। बाबा ने हमें सत्य जवाब दिया, को हम, मैं कौन हूं, मैं वो ही शुद्ध आत्मा, सर्वशक्तिमान शिव बाबा की संतान। दादियां बताती हैं कि यज्ञ के प्रारंभ में वतन से योग के प्रोग्राम आते थे, संदेशी ध्यान में जाती थी और बाबा उनके द्वारा योग के प्रोग्राम भेजते थे। दादी कहती कि हम घंटों इसी नशे में बैठे रहते थे कि मैं वो ही शुद्ध आत्मा जो अपने मूल स्वरूप में सर्वशक्तिमान शिव बाबा की संतान। कहते हम घंटों इसी नशे में बैठे रहते, इतनी अपने मूल स्वरूप की अनुभूति थी। हमारा मूल स्वरूप है सत चित आनंद स्वरूप, मैं आत्मा सत्य हूं, चैतन्य हूं, आनंद स्वरूप। वो हमारा ओरिजिनल स्वरूप है। जब इस सत्य को हम भूल जाते हैं, देहभान में आने लगते हैं, तो दैहिक आकर्षण, इंद्रिय रसों का आकर्षण उत्पन्न होने लगा। बॉडी कॉन्शियस बन गए। फिर भी द्वापर में भी देखो, देहभान में आए, देह अभिमानी बने, इंद्रिय रसों का आकर्षण बढ़ने लगा, देखने का रस, कोई हमारी जिम्मेवारी ना हो, कोई आवश्यकता ना हो, तो भी इधर उधर देखते रहना, हाँ, देखने का रस। और उसमें अति होती जाती, न सिर्फ देखते हैं आंखों से, लेकिन उसका रस भी चखते हैं, है ना? साक्षीपन से नहीं देखते हैं ना, उसके आकर्षण में आ जाते, मुड़ मुड़ के बार बार देखते रहते हैं, इधर क्या लगा, उधर क्या लगा, है ना, ये कौन जा रहा है, ये ऐसा है, तो या देखने का रस, सुनने का रस, दो व्यक्ति बात कर रही है पर हमारा कोई मतलब नहीं है, फिर भी बैठे यहां हैं और कान वहां होते हैं। अपनी जो जगदीश भाई जी ज्ञानामृत में शुरू में बहुत कार्टून द्वारा ज्ञान देते थे, अभी किताब भी है अपने उस कार्टून जो ज्ञानामृत में बहुत आते थे सारे, तो उसमें बताते हैं कि वे एक कमरे में दो बहनें बैठी हैं और बात कर रही हैं, और बाहर दीवार के पास एक बहन खड़ी है, वो क्या बात कर रहे हैं, मैं कौन हूं ये जानने की फुर्सत नहीं है, पर ये क्या बात कर रहे हैं वो जानने का इंटरेस्ट है। तो सुनने का रस है ना, कोई ऐसी बात करते हैं जिसकी हमें पता नहीं है, तो हम कितना इंटरेस्ट दिखा के, अरे भाई मेरे को बताओ, मेरे को बताओ क्या हुआ, हाँ, जैसे कि वो जानने बिगर देवता बन नहीं पाएंगे इतना इम्पोर्टेंट है क्या जानना, सुनना, समझना, तो वही है ना जो देवता बनना है। बाबा तो वही बातें बताते हैं, देवता बनने के लिए जो जरूरी नहीं है वो कितना भी पूछो पर बाबा नहीं बताते। हम सभी तो स्थापना के लिए निमित्त है ना, भगवान के साथी मददगार है नई दुनिया स्थापना के लिए, पर इंटरेस्ट विनाश कब होगा उसमें भाई हमारा विनाश से तो कोई मतलब ही नहीं है ना, वो तो ऑटोमेटिक होना ही है। हम तो स्थापना का कार्य करने वाले लोग हैं, तो शुरू में जब कम भाई बहने होते थे, बाबा से पूछते थे, एक मुरली में ही बाबा ने कहा कि बाबा नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे 3 बार कहा है उस मुरली में, बाबा तो हमें सोल कॉन्शियस बनाना चाहता है ना, आत्माभिमानी बनाना, परमात्मा अभिमानी बनना है। अगर बाबा विनाश कब होगा ये टाइम बतावे तो हम तो टाइम कॉन्शियस हो जाएंगे। जब टाइम कॉन्शियस व्यक्ति हो जाता है तो वो आनंद का अनुभव नहीं कर पाता है ना, क्योंकि टाइम में बुद्धि चली गई। बाबा तो हमें सोल कॉन्शियस बनाना चाहते, बोलने का रस। ओरिजिनली तो हम शांत स्वरूप है ना, पर हम ढूंढते रहते हैं, कोई काम नहीं है, फ्री हैं, आराम से बैठे हैं, पर अंदर अंदर इच्छा होती है, ढूंढेंगे कि कोई आवे तो बैठे बात करे। इसलिए कईयों को भट्ठी में मजा नहीं आता है। कि चुप चुप रहना है। चुप नहीं रहना है, अपने आप से बात करनी है, बाबा से बात करनी है, ज्ञान का चिंतन करना है। पर हम बोलने के इतने अभ्यासी हैं कि मुख भी बंद रहेगा तो भी मन चलता रहता है। जो चाहे वही सोचे, उसको कहते हैं मन का मौन। अनावश्यक विचार क्यों आए? फिर खाने का रस, स्वाद, गुजरातियों को तो बहुत स्वादिष्ट सब चाहिए ना भाई, खाने के शौकीन हैं। खाऊं 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 होता रहता है। आज पकोड़े बनाएंगे, आज ये बनाएंगे। पूरे भारत में हम घूमे हैं, गुजरातियों जितना वैरायटी कोई नहीं खाता। मुझे सबसे बड़ा पेपर मधुबन में वो ही आया। एक बार मधुबन में पता नहीं पानी नहीं था या वहां नहीं था, हम भावनगर में थे, तो हमने दादी को लिखा कि दादी हम वहां आ जाएं। तो दादी ने कहा तुमको यहाँ का खाना पसंद आएगा, गुजरातियों को। और जब ड्रामा अनुसार मधुबन में आए तो मैंने एक दिन शिरुबेन को पूछा कि आपको अच्छा लगता है भोजन? तो मेरे को कहती है कि थोड़े दिन के बाद तुमको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि स्वाद की बात नहीं रहेगी, पेट भरने की बात रहेगी। तो हमने अपने आप को चेंज किया। सेंटर में तो सेवा में जाते हैं और देरी से भी आते हैं तो साथी बहनें होती हैं, भोजन गरम करके हमें खिलाएंगी। और मधुबन में तो टाइम से होता है, 2 बजे माना सब समेट के रख देते हैं। भल आप सेवा में बिजी हैं पर जब जाएंगे तो कोई दिखेगा ही नहीं खिलाने वाला। तो एक बार मुझे बहुत काफी देरी हो गई, 2:30 बज गए, तो जब मैं गई भंडारे में तो कोई था ही नहीं। बड़े बड़े पतीले में जो बचा खाना था वो एक तरफ रखा हुआ था। तो हम तो बाबा पर नाराज हो गए। हाँ, कि आपकी सेवा करते हैं और कोई फिर खिलाने वाला भी नहीं होता है। तो हम बिना खाए कमरे में वापस जा रहे थे और बाबा से बात कर रहे थे कि आपने मेरा अच्छा मधुबन में बुला के घाट गड़ा है। पर बाबा देखो, तो मैं ट्रेनिंग सेंटर में ऊपर रूम में जा रही थी, तो वहां ही नीचे सीढ़ी के पास प्रेस का टेबल था, कपड़ा प्रेस करते ना, तो मनोहर दादी की जो ब्राह्मणी थी छोटी, वो प्रेस कर रही थी साड़ी, और मैं तो नाराज होके जा रही थी रूम में कि नहीं खाना है। तो फिर उसने कहा, अरे दीदी आप कहाँ गए थे, दादी ने आपको याद किया, आपकी भोजन की थाली तैयार करके मैंने रखी है। मैंने कहा नहीं नहीं मैंने खा लिया। कहते नहीं 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 दादी ने खास रखवाई थी, तो चलो मैं आती हूँ। तो बाबा ने ऐसे ऐसे मदद की दादियों के द्वारा, किसी के द्वारा, कि फिर हम सेट हो गए मधुबन में। तो खाने का रस, स्वाद इंद्रिय खींचती है ना, पर पहले हम खाने के लिए जीते थे और अब जीने के लिए जो आवश्यक है, सात्विक है, पौष्टिक है, वो खाना है। कहते हैं ना कि योगी अति आहारी भी नहीं होते हैं, अनाहारी भी नहीं होते हैं, नहीं खाना है ऐसे भी नहीं, खाऊं खाऊं करना है ऐसे भी नहीं, मिताहारी बनना है, जो शरीर के लिए जरूरी है। तो आत्मा न सिर्फ विकारों में फंसती है, वो जो दैहिक वृत्तियां भाव, न सिर्फ विकार माया के वश होती, लेकिन इंद्रिय रसों में भी फंसते। आप हरेक अपने आप को देखिए, कौन सी इंद्रिय का रस है जिसमें हम फंस जाते हैं। तो प्रथम पाठ जो बाबा ने सिखाया, अपने आत्म स्वरूप का जो बाबा ने ज्ञान दिया, तो हमारे में वो शक्ति आ जाती है इन इंद्रिय रसों से न्यारा बनने की। इसको इंद्रिय आनंद कहते। जब इंद्रिय आनंद में ज्यादा जाते हैं, मान लो मुझे टीवी देखने में मजा आता है, पर मैं 8-10 घंटा देखती रहूं तो इंद्रिय को रोग लग जाएंगे, है ना, आंखें खराब हो जाएंगी, बुद्धि खराब हो जाएंगी। इसलिए बाबा आकर के हमें अतीन्द्रियानंद, इंद्रिय से परे न्यारे स्वस्वरूप का आनंद लेने के लिए कहते हैं। इसलिए द्वापर में जब हम पतित बनने लगे, इंद्रिय रसों में फंसने लगे, तो भी आत्मा को वो अच्छा नहीं लगा, तभी तो भक्ति शुरू की ना, क्योंकि ओरिजिनली आत्मा शुद्ध है, सत्य है, परंतु शरीर धारण कर पार्ट बजाते बजाते हम बॉडी कॉन्शियस बन गए, क्योंकि आत्मा सूक्ष्म है, निराकार है। तो भक्ति शुरू की ना, भगवान की याद आई, क्योंकि आत्मा को अपने शुद्ध स्वरूप में आनंद है। भक्ति में भी कहते हैं ना कि तीन स्वरूप है, एक है स्थूल भक्ति, चित्र रखना, मूर्ति रखना, और उसके सामने बैठकर जो पूजा पाठ भजन कीर्तन सब कुछ करते हैं वो स्थूल भक्ति है, क्योंकि भगवान के या देवताओं के स्थूल चित्र मूर्ति के आधार पर भगवान को याद करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कोरोना में मंदिर भी बंद थे तो जो मूर्ति और मंदिरों पर आधारित थे वो बेचारे परेशान हो गए। हम बच्चों को तो रोज निराकार को याद करने का अभ्यास है, बेशक सेंटर में जाना, मिलके पढ़ना, उसका अपना एक आनंद है, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ ना हम सबको कि हम बाबा को याद नहीं कर पाए। कोरोना में तो सब फ्री थे ना, मोरबी के व्यापारी फ्री थे कि नहीं थे पर हम तो बाबा की याद में रह सके ना, क्योंकि हमें अभ्यास है, हम कोई व्यक्ति पर आधारित नहीं है, कोई साधन पर आधारित नहीं है। भक्ति में भी कहते हैं स्थूल से सूक्ष्म में जाना है। जो मूर्ति चित्र रखकर योग करते, भक्ति करते, उसके बजाय मन में वो चित्र मूर्ति देवताओं का, देवियों का, जिसका भी मतलब मानते हैं, मानसिक स्वरूप लाकर उसको याद करना। उनको चित्रों साधन की आधार नहीं। और उसके बाद भी भक्ति में कहते हैं कि सूक्ष्म से मूल में जाना है। जो मूल स्वरूप है, निराकार ज्योति स्वरूप, बाबा कहते हैं ना, हे भगवान जब कहते हैं तो बेहद स्वरूप ही आता है। भल कृष्ण राम अंबा दुर्गा को मानते भी हैं पर हे भगवान तो कोई चित्र नहीं आता, एक शक्ति बुद्धि में आती है, तो वो मूल भक्ति है। वो बाबा ने हमें सिखाई। हमारा अपना मूल स्वरूप और बाबा का मूल स्वरूप, निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप। तो देहधारी देवात्मा हो, धर्मात्मा हो या महात्मा हो, देहधारी की याद देहभान में लाने वाली। भले आप देवात्मा को याद करो पर शरीर ही बुद्धि में आएगा ना, इसलिए बाबा कहते हैं निराकारी आत्माभिमानी बनकर निराकार बाप को याद करो। तो हम देहभान से न्यारे होते हैं और अपने मूल स्वरूप और बाबा के मूल स्वरूप का आनंद अनुभव करते हैं, उसको अतींद्रिय आनंद कहते हैं। आत्मा इंद्रियों से परे होकर परमात्मा की याद का जो सुख और आनंद अनुभव करते हैं उसको अतींद्रिय सुख कहते हैं। वो हम सब अनुभव कर रहे हैं, है ना। लोग कहते हैं ना कि कुछ करते तो है नहीं, चुपचाप बैठे रहते हैं और एक दो को देखते रहते हैं, ये कौन सा योग है इसका, है ना। क्योंकि कुछ भी क्रिया नहीं है, कुछ भी साधन नहीं है, याद का आनंद है, श्रेष्ठ स्मृति का आनंद है। कोई क्रिया नहीं, कोई साधन नहीं, साइलेंस में बैठकर अपने शुद्ध दिव्य पवित्र सत्य स्वरूप का आनंद। इसलिए हम सबके अनुभव में है ना कि देखने में कुछ भी नहीं, बाबा कहते ना, तुम भी गुप्त, मैं भी गुप्त, प्राप्ति भी गुप्त, पर ये सत्य है, सत्य का आनंद है। तो जितना जब भी बाबा की याद में हम बैठते हैं, सभी बातों से न्यारा होना, साइलेंस में बैठकर सभी बातों से न्यारा होना है, अर्थात अपने आत्मा स्वरूप में स्थित होना है। क्योंकि न्यारी कौन है? आत्मा है। आत्मा के आसपास शरीर से लेकर पूरा संसार तो स्थूल है, भौतिक है, है ना? मैं स्वयं आत्मा इन पांच तत्वों से न्यारी हूं, और चैतन्य आत्मा है। शरीर तो जड़ है, उसमें कोई आनंद की बात थोड़ी है। आनंद की अनुभूति किसको होती है? आत्मा को होती है ना। आत्मा में ये सात गुण है ना, शांति, सुख, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। ये आत्मा से कनेक्टेड फीलिंग्स है, अनुभूतियां हैं। पर जब हम बॉडी कॉन्शियस बन जाते हैं तो इंद्रिय रस, साधनों का आकर्षण है ना, प्रवृत्ति का आकर्षण, स्थूल में हम चले जाते हैं। तो योग का पहला अभ्यास ही न्यारापन है। बार बार ये महसूस करना है कि मैं इससे अलग हूं। जितने अटैचमेंट बढ़ते जाते हैं शरीर के, इंद्रियों के, इंद्रिय रसों के, संबंध के, साधन के, इतना आत्मा स्थूल जड़ बनती जाती। इसलिए देखो आजकल गुण नहीं है ना, विकृति है, जड़ता है, बात न समझना, हठी बन जाना, जिद्दी बन जाना, क्रोधी बन जाना, अहंकारी बन जाना, ये क्या है? जड़ता है। आत्मा की चैतन्यता क्या है? शांति, सुख, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ये हमारी मूल क्वालिटीज हैं, अनुभूतियां हैं। तो हम इस दुनिया में रहते, शरीर में रहते न्यारे बनते हैं। डिटैचमेंट, न्यारापन योग की पहली शर्त है। जो बाबा की याद में बैठते हैं पर अपने आप को डिटैच नहीं कर पाते हैं तो उसको आनंद नहीं आता है योग में। बाबा की याद में बैठते हैं पर सबसे न्यारे होंगे और अपने वास्तविक स्वरूप से जुड़ेंगे तो आनंद होता है। अगर डिटैच नहीं होते और बुद्धि अनेक विचारों में घूमती है तो आनंद नहीं आता ना। वे योग में बैठे पर माथा भारी हो गया होता है ना। कई कहते हैं नींद आ जाती है, दो मिनट डिटैच होते हैं फिर वही विचारों में चले जाते हैं। तो हल्कापन और आनंद नहीं अनुभव होता। बैठे बाबा की याद में लाल लाइट हुई और सफेद लाइट हो गई तो हम हिलने लगते हैं। भाई आप तो डिटैच हुए थे, इतना जल्दी वापस अटैच हो गए। हाँ, भल हमें ही जिम्मेवारियां संभालनी है, हमें ही घर बार संभालना है, हमें ही नौकरी धंधा करना है। जो हमारा रोल है इस ड्रामा में, जो पार्ट है, जो रिलेशंस है, जिनके साथ हमारे संबंध है, वो भी कर्मिक अकाउंट से ही तो संबंध मिलते हैं। जो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, जिम्मेवारियां हैं, वो तो हमें अदा करनी ही है। पर कुछ क्षणों के लिए न्यारा होकर अपने स्वरूप से जुड़ना है। तो हम प्रवृत्ति में, संबंधों में, संसार में खो नहीं जाएंगे, पर बार बार दो मिनट, एक मिनट, पांच मिनट, आधा घंटा, हरेक को टाइम तो है बाबा के लिए निकाला है ना सबने। वो न्यारा होने से हम एम्पावर होते, रिचार्ज होते, क्योंकि मैं आत्मा शक्ति स्वरूप। तो जितना हम अपने आत्म स्वरूप से अटैच होंगे उतना हमें शक्ति मिलेगी। जैसे देखो सूर्य है, प्रकाश का गोला है ना, वो है ही लाइट का एम्बॉडीमेंट, प्रकाश स्वरूप है। तो अपने आप वो प्रकाश देता ही रहता है ना, उसको कुछ प्रोग्राम नहीं बनाना पड़ता है, वो है ही प्रकाश स्वरूप। पर अगर मुझे रोशनी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे अपने खिड़की दरवाजे खोलने होंगे, पर्दे हटाने होंगे, मुझे अपनी आंखें खोलनी होंगी, मुझे सूर्य के तरफ योग लगाना होगा, वहां देखना होगा। सेम बाबा तो है ही ज्ञान सूर्य, हमें उनके तरफ बुद्धि लगानी है। और मैं आत्मा भी ज्ञान स्वरूप हूं, तो मुझे अपने स्वरूप के प्रति भी बार बार बुद्धि का मुख रखना होगा। कहते ना सूर्य मुखी, सूर्य के तरफ देखते हैं। तो हमें भी ज्ञान सूर्य मुखी बनना है। बुद्धि का मुख जितनी बार बाबा के तरफ, अपने स्वरूप के प्रति, उतना हमारे में चैतन्यता आएगी। माना ये मूल हमारे जो गुण हैं और बाबा जिन गुणों का सागर है वो अनुभूति ऑटोमेटिक आपको होगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि जो स्थूल है, जो तत्व है, शरीर, शरीर क्या है? तत्व है ना, पांच तत्व का बना है, तत्व तो जड़ है, देखने में आता है कि भाई हाथ काम कर रहा है, मुख बोल रहा है, कान सुन रहा है, पर सत्य क्या है? आत्मा सुन रही, आत्मा देख रही है, शक्ति आत्मा है, वो इन कर्मेंद्रियों को क्रियाशील रखती है। तो ये प्रैक्टिस चाहिए कि मुझे अपने ही स्वरूप में आनंद आए। मैं इनसे अलग हूं। अब बैठे हैं योग में, पर मन और बुद्धि से घूम रहे हैं, है ना? विमान, बुद्धि रूपी विमान में बैठकर मार्केट में जा रहे हैं, किचन में जा रहे हैं, फ्रिज में जा रहे हैं, होता है ना कि अरे वो फ्रिज से निकालना था, भूल गई। तो बुद्धि से तो हम यहीं घूम रहे हैं, हम तो उड़े ही नहीं, तो आनंद कैसे आएगा? हम तो इसी में लगे रहे। तो अपने आप को समझाना है कि भल मुझे ही संभालना है, मेरी जिम्मेवारी है, परंतु मुझे खुद को न्यारा करके अपने स्वरूप का चिंतन भी मुझे ही तो करना है। तो थोड़े समय के लिए अपने आप को समेट लेना, सारा वर्ष जो भी चीजें आती हैं घर में भरते रहते हैं, भरते रहते हैं, फिर दीपावली पर क्या करते हैं? हाँ, फिर क्या करते हैं? सफाई करते हैं। जो अनावश्यक है वो निकाल देते हैं, दे देते हैं या सेल कर देते हैं, निकाल देते हैं, और जो आवश्यक है उसका क्या करते हैं? अच्छी रीति साफ सुफ करके रखते हैं। हमें भी इसकी सफाई करनी, मन बुद्धि की, है ना? क्योंकि दिन भर, जीवन भर कितनी बातें मन में भरते रहते, तो शॉर्ट आउट करना है। अनावश्यक है वो निकाल दो, नहीं तो वही बातें बोझ बनती हैं, उड़ नहीं सकते हैं हम, उन बातों में ही घूमते रहेंगे। तो बाबा तो कहते हैं ना कि सफाई करो, स्वच्छता अभियान, मन स्वच्छता अभियान करो, जो आवश्यक है वो पवित्रता से, दिव्यता से रखना है। जो हमारी जिम्मेवारियां हैं, कारोबार है, वो तो करना ही है ना, पर शुद्धि से, प्रेम से, दिव्यता से वो प्रवृत्ति हमें करनी है। फिर हम रोज बुद्धि से ऊपर जाते। ज्ञान नहीं था, जीवन भर इंसान क्या करता है? दुनियावी बातें ही सोचता रहता है, बुद्धि उसी में लगी रहती है। इस दुनिया से पार जाना है, इसका अभ्यास करना है, वो तो कुछ करते नहीं थे। जानते थे अकेले आए हैं, अकेले जाना है, फिर भी बुद्धि से इस दुनिया से पार अपने असली घर में जाना है, ये कोई प्रैक्टिस नहीं करते थे हम। बाबा ने तो हमें घर का ज्ञान भी दिया और वहां जाने के समय का भी ज्ञान दिया। आज भी बाबा ने बताया ना कि 84 जन्म तुम्हारे पूरे हुए, अब वापस घर जाना है। तो भल हम इस दुनिया में रहते हैं पर मन की आंख से असली घर को भी देखते हैं कि ओरिजिनली उस पवित्र परम धाम में मुझे जाना। बाबा ने सबको प्रोग्राम दिया है ना, मिला है प्रोग्राम कौन सा? हाँ, मधुबन आने का प्रोग्राम बहनों ने दिया तो बुद्धि कहाँ लग गई थी, जाना जाना जाना। हाँ, मधुबन से लग गई, 4 दिन के बाद फिर मोरबी से लग जाएगी। हाँ, हमें फाइनल प्रोग्राम बाबा ने कौन सा दिया है याद है ना, सबको मिला है ना प्रोग्राम, भाइयों को जाना है कि नहीं जाना? हाँ, सबको जाना है। तो जहां जाना है और जिसके साथ जाना है, बुद्धि कहाँ लगनी चाहिए? उसी के साथ। आप भी पूछते हैं ना, बहन जी मेरे को किसके साथ बैठना है, कौन सी बस में जाना है, हमारे साथ कौन कौन होंगे? हाँ, तो बाबा के साथ जाना है और असली घर में जाना है। तो जितना बुद्धि हमारी इस दुनिया से ऊपर उठती है, ये सत्य है ना, ये बातें नहीं है, ये रियलिटी है। भक्ति में कोई शरीर छोड़ते हैं तो कहते हैं स्वर्ग गया, पर वो सत्य नहीं है। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये सत्य है कि हम सबको वापस घर जाना है और फिर नई दुनिया में आना है। हम ही अलग अलग नाम रूप से 2 युग साथ साथ होंगे। तो जितना आप स्थूल से ऊपर उठते हैं उतने हल्के और हल्केपन का आनंद। कहते हैं ना, व्यक्ति जब खुश होती है तो क्या कहते हैं, पांव जमीन पर नहीं है इसके, बस ये तो खुशी के मारे नाच रहे, धरती पर पैर नहीं। तो जितना डिटैच होंगे इतना अलौकिक आनंद का अनुभव होगा। और तीसरी बात, परमधाम में जाकर बाबा के सन्मुख बैठते, जो हमारा प्रिय है, सुखदाता है, प्यार का सागर है, दयालु है, कृपालु है, रहम दिल है। कोई अति प्रिय व्यक्ति सामने आ जाए तो कितना खुशी होती है कि अरे आप कहां से मिल गए। आनंद आता है ना, खुशी होती है। तो हमारा अति प्रिय कौन है? तो जब हम बुद्धि से बाबा के सामने बैठते हैं तो ऑटोमेटिक आनंद होता है, खुशी होती है, क्योंकि सही अर्थ में बाबा कल्याणकारी है, शुभचिंतक है, अविनाशी साथी है, हमें ऊंची नजर से देखने वाला है, हमें ऊंचा बनाने वाला है। तो जब बाबा के सामने बुद्धि से हम बैठते हैं तो हमें आनंद होता है, वो अतीन्द्रिय आनंद होता है, अलौकिक आनंद, जिसको याद में आनंद नहीं आता है वो योग में सो जाते हैं। आप वही अभ्यास सदा कर सकेंगे जिसमें आपको आनंद आता हो, खुशी हो। तो किस किस को याद में आनंद आता है? नहीं आता है तो आना चाहिए, अपने आप को समझाना चाहिए। क्योंकि उसमें मुझे आत्मा का कल्याण है, उसकी याद से। आज बाबा ने क्या कहा? पुण्यात्मा बनना है तो बाप को याद करो, क्योंकि याद से आत्मा की खाद निकलेगी, पावन बनेगी। और किसी की याद में कोई फायदा नहीं है, ये बार बार रियलाइज करना है। क्यों भगवान ने ये आदेश दिया, देह सहित देह के सर्व धर्म संबंध भूल जाओ? कहीं सोचते हैं कि भाई मेरा पति तो बहुत सुख देता है, मेरे बाबा तो बहुत सुखदाता है, मेरे बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, क्यों बाबा कहते हैं छोड़ो? अगर देह और देह संबंधों में सुख होता तो भगवान क्यों कहते छोड़ो? वो तो ज्ञान का सागर है ना, पर उसमें आत्मा की कोई उन्नति नहीं है, शुद्धि नहीं है, इसलिए बाबा कहते हैं देह सहित देह के सर्व धर्म संबंध भूलो। छोड़ो मीन्स भूलो। हमें कोई घरबार नहीं छोड़ना है, परिवार नहीं छोड़ना है, संसार प्रवृत्ति मार्ग का है, इसलिए भूलना, आसक्ति नहीं रखनी, रूहानी प्यार रखना है, रूहानियत में आनंद है, स्पिरिचुअलिटी। रूहानियत मीन्स आत्माभिमानिता। तभी तो बाबा ने 84 जन्मों का आज पूरा इतिहास बताया ना, कि द्वापर कलियुग 63 जन्म से तो पतितमो प्रधान ही बनते गए। तो अपने शुद्ध स्वरूप का आनंद, अखुट भंडार, सागर, ज्ञान गुण शक्तियों का सागर, बाबा की याद में आनंद प्राप्ति, शक्ति, शुद्धि, और अपने असली घर का आनंद, दुनिया कितनी भी अच्छी हो, घूमने के कितने अच्छे अच्छे स्थान हो, आप बहुत स्थानों पर जाते हैं, घूमते हैं, पर वापस क्या अच्छा लगता है? भाई अब घर चलो, फिर आएंगे, पर अभी तो बहुत हो गया, अभी घर चलो। क्योंकि घर में रिलैक्सेशन है ना, विश्राम की स्थिति है। तो बाबा कहते हैं ना, पूरा ड्रामा प्ले करके अब तुम थक गए, कमजोर बन गए, इसलिए हरेक को जीवन में कभी न कभी ऊपर जाने की इच्छा होती है कि नहीं? हाँ, कहीं ऐसी घटनाएं बनती है, बातें बनती है, तब होता है कि इससे तो ऊपर चले जाए तो अच्छा है। हाँ, क्योंकि आत्मा को वहां अपनी ओरिजिनल स्वरूप में विश्राम है, रिलैक्सेशन है। बाबा ये भी कहते कि कई अपने दूसरा भी घर रखते हैं, हिल स्टेशन पर या कोई ऐसे स्थान पर, वहां जाकर दो चार दिन, पांच छह दिन रिलैक्स होते हैं। तो बाबा ने हमें भी दो घर दिए, एक परमधाम और दूसरा सूक्ष्म वतन। बुद्धि से सूक्ष्म वतन में जाते हैं, अपने फरिश्ते स्वरूप में, जो हमारा लाइट स्वरूप है। बाबा कहते ये साधारण शरीर छिप जाए और प्रकाश स्वरूप प्रत्यक्ष हो जाए। तो फरिश्ता स्थिति का भी एक आनंद है। और प्रैक्टिकल भी, जब कभी भी रिफ्रेश होना है, मधुबन घर में आते हैं, जहां दुनिया से अलग ही स्वरूप है ना, शांति, पवित्रता, ज्ञान, योग, पढ़ाई का आनंद। जब कोई बात आप सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, तो खुशी होती है ना, हाँ हाँ हाँ, अब मुझे आ गया, अब मैं समझ गई कैसे करना। तो जितना पढ़ाई करते हैं, ज्ञान योग करते हैं, इतना अलौकिक आनंद होता है। भक्ति में तो बेचारे ढूंढते हैं, खोजते हैं, प्राप्ति के आनंद का अनुभव ही नहीं। तो खुद को समझाओ कि हमें हर सत्य का ज्ञान मिला है। ऐसी कोई बात नहीं जो हम ना जानते हो, ना समझते। हमारे प्रैक्टिकल व्यावहारिक जीवन को पवित्र योगी बनाने की हर बात बाबा ने समझाई। संपूर्ण बनने की हर बात अव्यक्त बाप दादा 50 वर्षों से हमें समझा रहे हैं, है ना? ज्ञान स्वरूप बनने का आनंद, ये अतींद्रिय आनंद है। तो बाबा ने ज्ञान दिया, बाबा के बच्चों ने रास्ता बताया, अब खुद गहराई में जाकर खुद को समझा के खुशी में रहना, आनंद में रहना। इसलिए देखो गायन भी क्या है कि मुरली बजती थी और गोप गोपियां भागती थी। बताते हैं ना, घर में बच्चा रो रहा हो, चूल्हे पर खाना चढ़ाया हो, परिवार ना कहता हो, तो भी मुरली की तान सुनते ही वो गोपियां भागती थी। वो गोप गोपियां कौन है, है ना? हम है। मुरली का आकर्षण है ना, रोज भागते हैं ना सुबह सुबह। हाँ, तो मुरली का आनंद माना ज्ञान के मनन चिंतन का आनंद। तो जितना आनंद स्वरूप बनेंगे उतना अच्छा पुरुषार्थ कर सकेंगे, थकेंगे नहीं, उमंग उत्साह रहेगा और सहज लगेगा। ओम शांति। ठीक है, दो दो की जोड़ी बन जाइए, आमने सामने खड़े हो जाइए, आगे पीछे, आगे पीछे सामने हो जाओ, आस पास आगे पीछे। हैंडशेक करिए, गुड इवनिंग कहिए, राइट हैंड मिलाना। हाँ, नमस्ते करिए एक दो को, नमस्ते नमस्ते ऐसे, नमस्ते ऐसे करते हैं। सलाम वालेकुम करिए, ओम शांति कहिए, एक दो की पीठ थपथपाइए, वाह बाबा के बच्चे वाह। मारना नहीं है, मारना नहीं है, गले नहीं लगना है भाई, डिटैच रहना है। आज की मुरली की एक पॉइंट याद करिए और पार्टनर को कान में बताइए धीरे से, आज बाबा ने क्या पढ़ाया, याद करो। हाँ, बताओ एक दो को, याद है? किसको पॉइंट याद आई? बहुत अच्छा, ठीक है, बैठ जाइए। बाबा की याद में बैठेंगे, पहला अभ्यास अपने मूल स्वरूप में मस्त हो जाइए। मेरा अपना स्वरूप अविनाशी आत्मस्वरूप, दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप। मैं आत्मा सत्चित आनंद स्वरूप, शरीर रूपी गुफा में जगमगाता चैतन्य ज्योति स्वरूप। मुझे अपने दिव्य स्वरूप में ही आनंद है। बैठे बैठे राइट साइड घूम जाए, मुझे बाबा में आनंद है। मेरे सर्व संबंध, मेरी सर्व प्राप्तियां एक बाबा से है। अब मुझे न मन से भटकना है, न तन से भटकना है। मेरा योग बाबा से लग चुका है। याद में एकाग्र होना है। लगन बाबा से लग चुकी है। मुझे लगन में मगन हो जाना। बाबा के लव में लीन हो जाना है। मैं आत्मा, मेरा बाबा, बाबा मेरा साथी और जीवन सारथी है। बाबा के सामने हो जाइए। तीसरा अभ्यास, मुझे संगम युग के कल्याणकारी ड्रामा में आनंद है। मुझे अपने पार्ट में आनंद है। त्रिकालदर्शी ज्ञान स्वरूप बनकर ड्रामा प्ले करना है। मैं निमित्त ट्रस्टी बनकर पार्ट प्ले करती हूं। बाबा मालिक है, मैं निमित्त ट्रस्टी हूं। ड्रामा के हर दृश्य को, हर आत्मा के पार्ट को साक्षी होकर देखना है। और शुभ भावनाएं रखनी है। योग का सहयोग, शुभ भावना और शुभकामनाओं का सहयोग देना है। लेफ्ट साइड घूम जाइए। चौथा अभ्यास, भले इस शरीर से इस दुनिया में है, मन की आंख से असली घर को देखना है। मैं इस दुनिया में इसलिए हूं कि मैं सेवा कर सकूं। सर्व आत्माओं को बाबा से जोड़ सकूं। मैं इस शरीर में इसलिए हूं कि मैं बाबा को याद कर सकूं। मैं मन की आंख से खाली घर को देखो। अब वापस घर जाना है और नई दुनिया में आना है। वापस बाबा के सामने हो जाइए। पांचवा अभ्यास, दाता के बच्चे मैं आत्मा, मास्टर दाता। हर कर्मेंद्रिय से मास्टर दाता बनना है। बाबा ने हमें सब कुछ दिया है, अलौकिक प्राप्तियों और अनुभूतियों से हमें भरपूर किया है। हमें भी ये अलौकिक अनुभूतियां शांति की, शक्ति की, खुशी की, अनुभूतियां बांटनी है। इस अंतिम जन्म के जो भी लौकिक मित्र संबंधी परिवार है, इस अलौकिक जन्म के अलौकिक साथी परिवार है, उनको इमर्ज कर शुभ भावनाएं देनी है, शुभकामनाएं देनी है। वे भी बाबा के बने पूरा वर्षा प्राप्त। समस्त विश्व की आत्माओं को इमर्ज करें, शुभ संदेश दें, योग का सहयोग दे। समस्त प्रकृति जगत, पशु पंछी, वनस्पति जगत, उनको भी योग के पवित्रता के वाइब्रेशंस दे। प्यार, संतुष्टता, खुशी और शक्ति की सकाश दे, वाइब्रेशंस दे। दुआएं और खुशी अनुभव करें, बांटें।